संख्या 84 अध्याय 6 सूरदास की विशेषता। एक, गौड़ीय वैष्णव अलंकारिकों की गोपियां और सूरदास। गौड़ीय वैष्णवों के साथ सूरदास का क्या संबंध था, इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ गौड़ीय वैष्णवों की नायिकाओं के साथ सूरदास की गोपियों की तुलना करेंगे। हमारा लक्ष्य सर्वदा सूरदास का विशेष दृष्टिकोण स्पष्ट करने की ओर होगा। गौड़ीय वैष्णवों के अनुसार ब्रज में दो तरह की नायिकाएं थी, कुछ स्वकीय और कुछ परकीय। भागवत में कथा आती है कि कुछ गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी का व्रत करती थी। इनसे गांधर्व विधि से श्री कृष्ण ने विवाह किया था, ये स्वकीय थी, बाकी परकीय। राधा दूसरी श्रेणी में आती है, पर सूरदास राधिका को परकीय नहीं समझते। राधिका से श्री कृष्ण का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ होता है। यही नहीं, राधिका भी और गोपियों की तरह श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रत करती है। एक, उज्ज्वल नीलमणि किरण, पृष्ठ संख्या 2-3। दो, सनकादिक नारद मुनि शिव विरंचि जान, देव दुदुम्भी मृदंग बाजे बर निशान, बारने तोरण बधाई हरि कीन ऊंचा, ब्रज की सब रीति भई बरसाने ब्याह इत्यादि। तीन, शिव सौ विनय करती कुमारी, जोरी कर मुख करती अस्तुति, बड़े प्रभु त्रिपुरारी। पृष्ठ संख्या 85। वैष्णव अलंकारिकों ने 363 प्रकार की नायिकाओं के उदाहरण के लिए सैकड़ों नाम गिनाए हैं। सूर सागर में इन गोपियों के नामों का कोई उल्लेख नहीं देख पड़ता। कुछ मुख्य नाम जैसे राधा, ललिता आदि जरूर आते हैं, पर अधिकांश गोपियां बिना नाम की ही हैं। उज्ज्वल नीलमणि में गोपियों के स्वभाव और वस्त्राभूषण आदि के बारे में विस्तृत वर्णन है। उक्त ग्रंथ का एक संक्षिप्त संस्करण उज्ज्वल नीलमणि किरण नाम से विश्वनाथ चक्रवर्ती ने 16वीं शताब्दी में किया था। इस संक्षिप्त ग्रंथ के अनुसार गोपियों के स्वभाव इस प्रकार हैं। कुछ गोपियां प्रखर स्वभाव की थीं, जैसे श्यामला, मंगला आदि। श्री राधा और पाली प्रभृति कुछ गोपियां मध्या और चंद्रावली आदि कुछ मृदु स्वभावा थीं। इनमें भी स्वपक्षा, सुहृत पक्षा, तटस्थ पक्षा और प्रतिपक्षा, ये चार भेद हैं। इनमें भी कुछ वामा है और कुछ दक्षिणा। श्री राधिका की स्वपक्षा थी ललिता और विशाखा, सुहृत पक्षा श्यामला, तटस्थ पक्षा भद्रा और प्रतिपक्षा चंद्रावली थी। श्रीमती राधा वामा मध्या थी, कभी नील वस्त्र धारण करती थी, कभी लाल। ललिता प्रखरा और मयूर पुच्छ जैसा वस्त्र धारण करती थी। विशाखा थी वामा मध्या और तारावली खचित वस्त्र पहनती थी। इंदुरेखा वामा प्रखरा और अरुण वस्त्रा थी। रंगदेवी और सुदेवी वामा मध्या और रक्त वस्त्रा थी, ये सभी गोरी थी। चंपक लता वामा मध्या और नील वस्त्र, चित्रा दक्षिणा, मृद्वी नील वसना, तुंगविधा दक्षिणा, प्रखरा और शुक्ल वस्त्रा, श्याम मदा वामा दक्षिणी युक्ता प्रखरा और रक्त वस्त्रा, भद्रा दक्षिणा, मृद्वी और चित्र वसना, चंद्रावली दक्षिणा, मृद्वी और नील वसना थी। इनकी सखी पद्मा दक्षिणा और प्रखरा, श्रव्या दक्षिणा और मृद्वी थी, ये सभी रक्त वस्त्र धारण करती थी। इनमें तो कोई संदेह ही नहीं कि सूरदास ने इतने नामों को नहीं गिनाया, पर जिन्हें गिनाया है उनमें राधा का वस्त्र इन विवृत्ति से मिलता है। सूरदास ने कभी कभी एक दो सखियों के नाम गिनाए हैं। सीत भीत न करती सुंदरी, कृष भई सुकुमारी, छहो ऋतु तप करती नी के गेह नेह बिसारी, ध्यान धरी कर जोर लोचन मुदी इक इक जाम, विनय अंचल छोरी रवि सौ करती है सब बाम। हम ही हो हूँ कृपालु दीन मनि तुम विदित, संसार काम अति तनु दहत दीजे सुर हरी भरतार। एक, देखिए नील लहंगा लाल चोली, कसी उबटी केसरी सुरंगनो, 2280। देखो जुवती बृंद में ठाड़ी नील बसन तनु गोरी, 116। नील बसन फरिया कटी, पहिरे बेनी पीठ रुचिर झकझोरी, 462। दो, देखिए पद संस्करण 1073, राधा कृष्ण जी का संस्करण। पृष्ठ संख्या 86। पर उनमें प्रतिपक्षता या तटस्थ पक्षता का कोई लक्षण नहीं मिलता। दानी लीला के प्रसंग में चंद्रावली, ललिता और विशाखा का नाम आया है, सही, पर चंद्रावली वहाँ ललिता की भांति ही एक सखी है। दानी लीला की गोपियों में प्रश्नोत्तर करते समय नाम लेकर केवल राधा का वर्णन आया है, वहाँ राधा मध्या नायिका नहीं है। इनकी मुखरता दानी लीला के सैकड़ों पदों में फूट पड़ी है, पर यही राधा अन्यत्र मुग्धा की भांति दिखलाई पड़ती है। वस्तुतः सूरदास ने अलंकारिकों के वर्गीकरण की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। राधा की सखियों में ललिता का चित्र सबसे अधिक स्पष्ट है। विशाखा भी ललिता की भांति ही चित्रित की गई है। वैष्णव अलंकारिकों ने द्युति कर्म के विषय में भी विचार किया है। उज्जवल नीलमणि के अनुसार कृष्ण की तीन प्रधान दूतियां हैं, वीरा, वृंदा और वंशी। पर सूरदास ने विशाखा से दौत्य कर्म कराया है। अलंकारिकों के अनुसार ललिता का स्वभाव प्रखर है, पर सूरदास की ललिता धीर है। कृष्ण के पास जाकर बड़े कौशल से वह संदेश पहुंचाती है। पहले कृष्ण के मन में उत्सुकता प्रकट करती है, फिर लालसा और बाद में प्रयत्न। ललिता मुख चितवत मुस्काने, आपु हसी पियप मुख, अवलोकत दुहन मन ही मन जाने। तब बोली वह चतुर नागरी, अचरज कथा सुनाओ, सूर श्याम जो चलो तुरत ही नैनन जाई दिखाओ। 1679। ललिता ने इसके बाद एक अनुपम बाग दिखाने की बात कही। अद्भुत एक अनुपम बाग जुगल कमल पर गजवत क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग, हरि पर सरवर सर पर गिरिवर, गिरी पर फूले कंज पराग, रुचिर कपोत बसे ता ऊपर अमृत फल लाग, खल पर पुह पुह पर पल्लव, ता पर सुख पिक मृग मद का, खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर इक मणिधर नाग, अंग अंग प्रति और छवि, उपमा ताको करत न त्याग। सूरदास प्रभु पियो सुधारस, मानव अधरनी के बड़ भाग। 1680। इस प्रकार सूरदास की ललिता अलंकारिकों की ललिता नहीं है। राधिका का स्वभाव भी एक सा नहीं है। कभी वे मुखर हैं और कभी शांत, कभी पौढ़ा है और कभी मुग्धा। निम्नलिखित विभिन्न चित्रों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। श्याम सखी नीके देखे नाही, चितवत ही लोचन भरी आए, बार बार पछताही। 1. उज्जवल नीलमणि किरण, पृष्ठ संख्या 6-7, पृष्ठ संख्या 87। कैसे हूँ करी इकटक मैं, राखती न कही मैं अकुलाही, निमिष मनो छवि पर रखवारे, ताते अति ही डराही। कहाँ करे इनको कहाँ दूषण, इन अपनी सी कीनी, सूर श्याम छवि पर मन अटक्यो, उन सब शोभा लीनी। 1418। चितवन रोके हूँ न रही, श्याम सुंदर सिंध सन्मुख सरित उमंगी बही, प्रेम सलिल प्रवाह भौरनी, मिली कबहू न था लही, लोभ लहरी कटाक्ष घूंघट पट करार ढही, थके पल पथ नाव धीरज परत नहीं गही, घट मेरो जब ही भरी देहो, लकुटी हौं तब देहो, कहा भयो जो नंद बड़े, वृष भानु आन न डरै हौं, समसरी मिल करी कह हौं। 843। तुम्हारोई चित्र बनाओ कियौ, तब कौ इंदु समहारी, तुरत ही मनसिज साज लियौ, व्रत गही जुग अंगुरी के, बीच ही उन भरी पानी पियौ। 3474। उज्जवल नीलमणि के अनुसार राधा सदाय व्यक्त यौवना किशोरी थी, चंद्रावली और पद्मा पूर्ण यौवना। सूरदास की राधा कई अवस्थाओं में पाई जाती है, उनका बाल रूप भी वर्णित है, किशोरी और तरुणी रूप भी। मगर सूरदास की इन स्वभाव और उम्र संबंधी विविधताओं का अर्थ चित्र की अनेकता नहीं है। उन्होंने राधा का एक संपूर्ण चित्र दिया है। अवस्था और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन दिखलाई जरूर देता है, पर यह परिवर्तन चित्र को अधिक सजीव और आकर्षक बना देता है। अलंकारिकों ने तीन प्रकार की रति मानी है, साधारणी, समंजसा और समर्था। साधारणी रति कुब्जा आदि में, समंजसा मथुरा की रानियों में और समर्था ब्रज बालाओं में। समर्था रति में भी कई सीढ़ियां हैं। प्रथम दशा में रति बीज की नाई, प्रेम ईख की नाई, स्नेह रस की तरह, मान गुड़ की तरह, प्रणय खाड़ की तरह, राग सरकरा यानी चीनी की तरह, अनुराग मिश्री की तरह और अंत में महाभाव सीतोपल की भांति दृष्ट होता है। सूरदास की राधा रुक्मिणी के साथ एक आसन पर दो बहनों की भांति बैठती हैं। दोनों ही श्री कृष्ण की परम प्यारी हैं। अलंकारिकों के अनुसार महाभाव केवल राधा में ही संभव है। महाभाव वह है जहाँ प्रिय मिलन के सुख के समान कोटि ब्रह्मांड का सुख भी नहीं होता और उसके विरह के दुख के समान कोटि नरक का दुख भी नहीं होता। पृष्ठ संख्या 88। इसके भी दो भेद हैं, मोदन और मादन। मोदन की अवस्था में पट महिषी गण द्वारा आलिंगित होने पर भी श्री कृष्ण राधा का स्मरण कर मूर्छित हो जाते हैं। मादन महाभाव में राधिका को श्री कृष्ण की मुरली और वनमाला से भी ईर्ष्या होती है। यह मादन महाभाव राधिका में ही संभव है, पर सूरदास गोपियों में भी इस अवस्था का वर्णन करते हैं। भागवतामृत के अनुसार श्री कृष्ण द्वारिका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और ब्रज में पूर्णतम रहते हैं। सूरदास इस मत पर विश्वास करते से जान पड़ते हैं। सूर सागर में ब्रज लीलाओं की अधिकता है, मथुरा की कम और द्वारिका की और भी कम है। ब्रज में श्री कृष्ण 11 वर्ष तक ही रहे हैं। इसी अवस्था में उन्होंने तीन तरह की लीलाएं की हैं, बाल्य, पौगंड और कैसोर। सूरदास से अधिक स्पष्ट रूप से इन लीलाओं का वर्णन किसी ने नहीं किया। सूरदास की कविता से साफ प्रकट होता है कि ब्रज लीला के समय भगवान की अवस्था 10 वर्ष के आसपास थी। बहुत हो हुगे दसे बरस के बात कहत हो बने बनाई। 1142 सूरदास अब बड़े भय हो जोबन दान सुहाई। 1139 तरुनाई तन आवन दीजे कत जिय होत बिहाल। मांगत ऐसे दान कन्हाई अब समझी हम बात तुम्हारी प्रकट भई कछु धौ तरुनाई। 1134 मतलब यह है कि सूरदास वैष्णव अलंकारिकों के पथ का अनुकरण नहीं करते। कहा जा सकता है कि ऊपर जिन ग्रंथों के उदाहरणों से सूरदास की कविता की तुलना की गई है वे सभी सूरदास के परवर्ती हैं या समकालीन, इसीलिए उनका सूर सागर में कोई प्रभाव विद्यमान न रहना स्वाभाविक ही है। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये बातें वैष्णवों में बहुत पहले से प्रचलित थी। उक्त ग्रंथों के प्रणेताओं ने उनका संग्रह भर किया है। इस बात को ध्यान में रखने पर सूरदास की स्वतंत्र सृजन शक्ति का महत्व समझ पड़ता है। 2. सूरदास की कविता का विषय। सूरदास भक्त थे। सूर सागर का कोई भी पाठक यह कह सकता है कि सूरदास उस श्रेणी के भक्त नहीं थे जैसे तुलसीदास। पृष्ठ संख्या 89 तुलसीदास की कोई भी रचना पढ़ने पर उनके दास्य भाव की प्रधानता स्पष्ट ही दिखलाई पड़ती है, परंतु सूरदास में यह भाव नहीं के बराबर है। सूरदास की भक्ति में वात्सल्य भाव और सख्य भाव की प्रधानता है। माधुर्य रस के प्रवाह में शायद कभी भी वे गौड़ीय वैष्णव जैसा नहीं बहे। राधा भाव के भजन सूर सागर में कम नहीं है, पर सूरदास सर्वत्र उन स्थानों पर तटस्थ की भांति रहते हैं। कहीं भी राधा में आत्म भाव या सखी भाव नहीं रखते। आरंभ में सूरदास जान पड़ता है सख्य या वात्सल्य की अपेक्षा दास्य की ओर अधिक झुके थे। सूरदास की विनय पत्रिका के नाम से जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसमें सूरदास दास्य रस के ही भक्त जान पड़ते हैं। इस अनुमान का समर्थन गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णवों की वार्ता से भी होता है। उक्त ग्रंथ के अनुसार एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य ब्रज में आकर कुछ दिनों तक गौ घाट पर टिके रहे। वहीं सूरदास जी का स्थान था। उनकी भक्ति और गान की मिठास के कारण बहुत लोग सूरदास के सेवक हो गए थे। महाप्रभु के आने की खबर जब सूरदास को मिली तो वो दर्शनार्थ उनके पास गए। उस समय महाप्रभु ठाकुर जी को भोग समर्पण करके स्वयं भी भोजन कर गादी पर विराज रहे थे। सूरदास को देखकर आपने कुछ भगवत भजन करने का आदेश किया। सूरदास ने आज्ञा पाकर यह पद गाया, हरि हौ सब पतितन कौ नायक, को करी सकई बराबरी, मेरी और नहीं को लायक। ऐसी कितिक गिनाओ प्राणपति सुमरन है, भयो आड़ो, अब की बार निबार लेउ प्रभु सुर पतित कौ टाड़ो। तथा प्रभु हौ सब पतितन कौ टीको, और पतित सब धौस चारी के हौ तो जनमत ही कौ, बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही कौ, मोही छाड़ी तुम और उधारे मीटई सूल क्यों जी कौ, कौ न समरथ अघ करीबे कौ खेची कहत हौ ली कौ, मरियत लाज सूर पतितन में मोहु तई को नी कौ। यह सुन प्रभु ने कहा, सूर हवै कई ऐसो घिघियात काहे कौ है, कछु भगवत लीला वर्णन करी। इस पर सूरदास ने अपना अज्ञान बताया। तब महाप्रभु ने उन्हें स्नान करके उनके पास आकर समझ लेने की आज्ञा दी। यथावत कर लौट आने पर महाप्रभु ने पहले सूरदास को नाम सुनाया, फिर समर्पण कराया और बाद में भागवत दशम स्कंद की अनुक्रमणिका कही। इसके बाद सूरदास को ज्ञानोदय हुआ और सारी भगवत की लीला का स्फुरण हुआ और उन्होंने यह पद गाया, चकई री चली चरण सरोवर जहां न प्रेम वियोग। पृष्ठ संख्या 90। यह पद उन्होंने आचार्य कृत दशम स्कंद की सुबोधिनी के मंगलाचरण की कारिका के अनुरूप बनाया। वह कारिका इस प्रकार है, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि शायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कला निधि। सूरदास के पद को सुनकर आचार्य संतुष्ट हुए। बाद को सूरदास ने यह पद सुनाया, ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी इत्यादि। इस परंपरा की सच्चाई पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए यह मान लिया जा सकता है कि महाप्रभु के संसर्ग में आने के बाद सूरदास ने अपना पुराना रास्ता छोड़ दिया और अपने गानों का मुख्य विषय भगवत लीला को ही बना लिया। सूर सागर और कुछ भी नहीं, शुरू से अंत तक भगवत लीला का वर्णन है। इसी लीला के अंतराल से सूरदास का युग देखना पड़ता है, जो संपूर्ण न होते हुए भी अस्पष्ट नहीं है। यत्र तत्र उस युग की रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, धर्म विश्वास आदि पर प्रकाश पड़ता है, पर सूरदास ने भूलकर भी इन विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिखा।